सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं उन्ताय मज्जरहिया जाय जरामरणनन्तपोरढा संसारलयातमहं जीर्णच्छिन्नाजिणं वन्दे यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक उसमें अभी हम उत्तर प्रकृति स्थिति विभक्ति के भुजगार का काल देख रहे थे नाना जीवों की अपेक्षा। हम पृष्ठ संख्या 72 पर आ गए 72। मार्गणाओं में बात चल रही है। कल हमने आनत से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों की बात पढ़ी थी उसी का विशेषार्थ अब देखते हैं तो दोबारा उसकी रिवीजन भी हो जाएगी अपनी। क्या कहते हैं 72 पृष्ठ पर विशेषार्थ आनतादिक में मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति ही होती है अतः वहां इसका सर्वदा काल बन जाता है किंतु इतनी विशेषता है कि अनंतानुबंधी की अवक्तव्य स्थिति भी होती है यानी विसंयोजन के बाद दोबारा मिथ्यात्व में आता है संयोजना होती है। सो उपक्रम काल के अनुसार उपक्रम कहने उसमें जन्म उसका अर्थ होता है उसमें उत्पन्न होना यानी उसको प्राप्त होना सम्यक तो में से मिथ्यात्व में आने पर विसंयोजना के बाद वहां संयोजना होती है अवक्तव्य होता है अनंत अनुबंधी का तो कहते उसको उपक्रम काल के एक जीव एक समय में फिर दोबारा दूसरे समय तीसरे समय में चौथे समय से लगातार होता रहे तो यहां भी ओघ के समान काल बतलाया है। कितना देखा था याद है भानु बहन ओघ के ओघ में कितना काल देखा था आवली के असंख्यात विभाग। अब रही सम्यक और सम्यक मिथ्या तो प्रकृतियां सो इनके यहाँ चारों पद बन जाते हैं अन्य में तो अल्पतर ही होगा परंतु इनमें तो चारों होते हैं क्योंकि मिथ्या तो में से सम्यक तो प्राप्त करते समय भुजगार हो सकता है अवस्थित हो सकता है अवक्तव्य हो सकता है और अदरवाइज अल्पतर तो हमेशा वहां होगा ही। उनमें से तीन पदों का तो उपक्रम काल के अनुसार जघन्य काल एक समय करना संयम हुआ है समय देखो वहां भी अल्पतर वाले तो हमेशा ही पाए जाएंगे तो उसका सदा काल कहेंगे और भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य का तो काल बताएंगे जघन्य कितना हो सकता है तो एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण बतलाया है वो सर्व जगह आवली के असंख्यात्व भाग ही लिया है और अल्पतर स्थिति वालों का सर्वदा सद्भाव पाया जाता है इसलिए इसका सर्वदा काल बतलाया है। ये अल्पतर वालों का सर्वदा सद्भाव क्यों है शुक्ल लेशा के कारण है कि वहाँ हमेशा समय दृष्टि पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे हाँ तो उनमें तो अल्पतर होगा ही होगा अल्पतर किसके होंगे समय दृष्टि के भी होगा मिथ्या दृष्टि के भी होगा मिथ्या तो में आने के बाद भी उद्वेलना करने वाले भी जीव वहाँ होंगे तो दोनों की अपेक्षा वहाँ हमेशा ही अल्पतर वाले तो होंगे ही ओघ में भी हमने देखा और किसी मार्गणा में भी ऐसा ही एक्सेप्ट जहाँ सांतर मार्गणाएं हैं उसको छोड़ा था हमने, बाकी सभी जगह अल्पतर वाले हो गए, यानी एक केंद्रियों में भी अल्पतर वाले हो गए, क्योंकि वहां तो उद्वेलना वाले होते हैं और वो हमेशा ही पाए जाएंगे। सभी जीव समासों में देखा था ना हमने, एक मनुष्य अपर्याप्त को छोड़ दो क्योंकि वो तो सांतर मार्गणा है, अन्यत्र सभी जगह ये उद्वेलना वाले करने वाले जीव हो गए। यानी सम्यक तो जिसने प्राप्त किया है और मिथ्यात्व में गया है, तो अभी वो सभी पर्याय में घूम रहा है, इसका अर्थ है ना। प्रत्येक पर्याय में कोई ना कोई वहां जीव है ही। शुक्ल लेशा में यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उसमें सब प्रकृतियों के संभव पदों के, संभव ने उसमें जो पॉसिबल है, उसमें जो होते हैं उसके पदों के काल को पूर्वोक्त प्रमाण कहा है। अनुदिशादि में तो अनुदिश और अनुत्तर सब प्रकृतियों की एक अल्पतर स्थिति ही होती है। एक और अल्पतर में गैप चाहिए और ही और होती में भी चाहिए। जैसे ग्रैवेग तक के हमने देखा था, अनंत से लेकर ग्रैवेग तक, अन्य की तो अल्पतर होती है, परंतु सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के बारे में तो हमने देखा था चारों ही होते हैं, वैसे यहाँ नहीं होता। क्यों? वहाँ सारे सम्यक दृष्टि है। परंतु वहाँ सब प्रकृतियों का सर्वदा सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहाँ अल्पतर स्थिति का सर्वदा काल बतलाया है। आभिनिबोधिक ज्ञानी आदि जो और मार्गणाएं गिनाई है, उनमें भी इसी प्रकार बतलाने का कारण यह है, उनमें भी अनुदिशादिक के समान व्यवस्था प्राप्त होती है, उनमें भी वो अल्पतर वाला होगा। आभिनिबोधिक है, सम्यक ज्ञानी है, तो उसमें तो मिथ्यात्व में जाके आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मार्गणा ही अपनी अभिनिबोधिक गायनी वाली है। सम्यक तो संबंधी जो मार्गणाएं हैं उसमें तो अल्पतर वाले होंगे हमेशा, ना ही अनंतानुबंधी का वक्तव्य होगा और ना ही सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का भुजगार अवस्थित और अल्पतर होगा, सॉरी अल्पतर नहीं, भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य होगा। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। एकेंद्रियों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के सब पदों का भंग ओघ के समान है, यानी सदाकाल है। इनमें कौन कौन से पद होते हैं?
अवक्तव्य नहीं होगा।
हाँ, अवक्तव्य अनंतानुबंधी का नहीं होगा, बाकी सब पद जो भुजगार है, अवस्थित है, अल्पतर है, वो सदाकाल होगी। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का कितना काल है? तो सब काल है, हमेशा ही उद्वेलना वाले जीव एकेंद्रियों में भी पाए जाएंगे। इसी प्रकार बादर एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय और इन दोनों के पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर पृथ्वी करना पूर्वी थी हुआ है, पृथ्वी बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर जल का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि का एक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर में तो अपर्याप्त लिए और सूक्ष्म में दोनों लिए। बादर वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त। वनस्पति निगोद तथा इन दोनों के बादर और सूक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त। बादर वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर अपर्याप्त। औदारिक मिश्र का योगी, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असंगी जीवों के जानना चाहिए। यही बात सर्वत्र घटित होती है, ये बात बताना चाहते हैं। फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे, 72 पेज पर चल रहा है नीचे का विशेषार्थ। ओघ में मिथ्यात्वादी 26 प्रकृतियों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदों का जो काल कहा है, वह एकेंद्रियों की मुख्यता से ही बतलाया है। सदा काल बताया था, क्योंकि एक इंद्रिय तो अनंत है, उसमें भी वो हमेशा ही पाए जाएंगे। अतः
आगे जो सम्यक्ता का जो भेद बताया नहीं, वो जो सब कॉमन बात की, वहाँ पे बादर पर्याप्त सभी छोड़ दिए।
हाँ, यहाँ बादर पर्याप्त उनको छोड़ दिया है। उसके कारण हमने देखा था संख्या की अपेक्षा घटित होता है
बादर में, पर्याप्त में कमजोर।
हाँ, तो उसमें तो हमेशा ही वो होगा, ये बात नहीं घटित होगी। बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त उनकी तो संख्या ज्यादा है, बादरों की कम है, और उसमें भी अपर्याप्तों की ज्यादा है, पर्याप्तों की बहुत कम है। ऐसा भी लेना है उसमें, जैसे हमने बादर पर्याप्तों को कहां पर लिया था, देखो उसमें भी पाए तो जाएंगे
पर सदा नहीं पाए जाएंगे,
या उनमें वो दूसरी भी अपेक्षा, उसमें कोई और कौन सी लेना चाहते हो?
नहीं, बादर में ये तो
बुजगार
और नौ नौ कसाई का तो हमेशा रहेंगे, खाली सम्यक तो और सम्यक मिथ्या तो में फर्क पड़ेगा।
मैं 26 प्रकृतियों में भी पहले हमने जो देखा था, इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त में देखो, यही मार्गणा और कहाँ कहाँ बताइए। बादर 137 नंबर का, हाँ बादरों को लिया है। देखो
ये तीनों, ये मिथ्या का 16 कसाई और 9 कसाई का तो तिर्यंच अपर्याप्त।
देखो क्यों ये ऐसा है, क्योंकि उसमें भुजगार कभी कभी होता है, अल्पतर और अवस्थित तो हमेशा ही पाए जाएंगे, परंतु भुजगार जगन्य एक समय और उत्कृष्ट आवली का असंख्यात्व भाग होता है। यही बात यहाँ भी बादरों में भी समझना है। ख्याल में आई बात? बादर पर्याप्तों में इसको क्यों छोड़ा इनको, जैसे नारकियों में हमने देखा था, अल्पतर वाले और अवस्थित वाले तो हमेशा ही पाए जाएंगे, परंतु भुजगार है तो कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बादरों में ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा था अल्पतर हमेशा ही पाया जाता है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमने देखा था कि देवों में से भी एकेंद्रीय बादरों में वो आने वाले जीव है, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग तक लगातार एक जीव की अपेक्षा उसका अल्पतर अल्पतर चलेगा, तो उतने काल में और जीव उसमें कभी आएंगे तो उनका भी अल्पतर तो चलेगा ही, उन्हीं जीवों में अवस्थित भी बनेगा, कोई ना कोई अवस्थित करने वाला भी होगा, क्योंकि हत समुत्पत्ति होने के बाद उतना का उतना बंद रह सकता है, परंतु भुजगार हर समय कोई ना कोई करने वाला नहीं भी होगा, ये बात बताना चाहते हैं। इसलिए बादरों को छोड़ा, पर्याप्तों को, क्योंकि उनमें देव भी उत्पन्न होते हैं और उनके लगातार अल्पतर चलता है, उस अपेक्षा से लिया उसमें। परंतु बादर अग्निकाय को भी छोड़ा है यहाँ पर, तो उसका कारण यही है,
संख्या की अपेक्षा।
भले देव नहीं आते हैं, परंतु अन्य पंचेंद्रिय तो आ सकते ना, मनुष्य में जा नहीं सकता, पर मनुष्य में यहाँ आएंगे तो सही, तिर्यंचों में भी आए तो सही, आएंगे सही,
तो
हमेशा ज्यादा जीव है, संख्या की अपेक्षा लेना है, और वहाँ भी उनके भुजगार नहीं होता वो बात नहीं है,
होता है पर कभी कभी,
वहाँ तो इतनी संख्या है कि भुजगार करने वाले भी हमेशा सदा काल पाए जाते हैं सूक्ष्म में अपर्याप्तों में वगैरह वगैरह, परंतु पर्याप्तों में अल्पतर भी हमेशा होगा, अवस्थित भी कोई ना कोई करने वाले होंगे, परंतु भुजगार में कभी अंतर पड़ सकता है। मैंने बादर एकेंद्रियों में भुजगार का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट अवलिका संख्यात्मक ओग में भी नारकियों में हमने ऐसा ही देखा था भुजगार में ओग में क्या लिखा था उन्होंने भुजगार के बारे में
तो हमेशा पाए जाते
हाँ मगर वहाँ तो जो लिखा था हमेशा पाए जाते हैं
तो
वहाँ तो सभी की अपेक्षा लेंगे यहाँ केंद्रीय इन जनरल कहेंगे तो ओग की अपेक्षा वहाँ भी कहा था ना ओग में जो सदाकाल कहा था वो एकेंद्रियों की मुख्यता से ही कहा था अनंत जीव है उसमें तो कोई ना कोई भुजगार करने वाला हमेशा ही पाया जाएगा अब हम आगे बढ़ेंगे लास्ट लाइन तथा एकेंद्रियों में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की एक अल्पतर पद ही मिथ्यात्व का एक अल्पतर पद ही होता है मिथ्यात्व की हुआ है मिथ्यात्व का और यहाँ उनका सदा सद्भाव पाया जाता है अतः यहाँ अल्पतर पद का सर्वदा काल कहा है आगे बादर एकेंद्र आदि जो बहुत सी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाती है अतः उनके काल को एकेंद्रियों के समान कहा है ये बात ख्याल में आई आगे बढ़ेंगे अभी आहारक काय योगियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है ये अंतर्मूर्त ही क्यों लिया हाँ उसका काल अंतर्मूर्त है और जघन्य काल एक समय कहने का कारण क्यों है एक जीव की अपेक्षा तो कहेंगे मरण यहाँ ऐसा लेना है ये तो सांतर मार्गणा है तो ऐसा हो सकता है कि किसी जीव ने आहारक शरीर बनाया है उसके बाद अंतर पड़ गया है अब वो जीव पूरा शरीर पूरा करके आहारक कायोग में आ गया है मिश्र कायोग से आगे चला आहारक कायोग में आया और एक समय में मरण हुआ तो उसके पीछे कोई जीव है ही नहीं करने वाला आगे भी कोई नहीं था अंतर में वो था तो वहाँ एक समय घटित हो सकता है
दूसरे समय में दूसरे समय में
हाँ एक समय तक रहा आहारक कायोग में एक समय तक क्योंकि अल्पतर कहने के लिए पहले उसके कोई कंपैरिजन के लिए कोई चाहिए तो दूसरे समय में वो उसका मरण हुआ और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्यों आहार का योग में वो अंतर्मूर्त तक रहा नाना जीव है या हाँ उतना ही काल लगेगा नाना जीवों की अपेक्षा से तो अधिक काल क्योंकि संख्यात ही जीव आते हैं एक जीव के लिए अंतर्मूर्त संख्यात जीव लगातार भी आएंगे तो कितने आ सकते हैं की संख्या तो मालूम है ना
करोड़ों में जाती है
27 ऐसे कुछ देखे थे ना हमने 27 दिन 52 इसमें कुछ 27 दिन 54 27 और
54 श्रेणी में देखा था यहाँ पे ये तो
श्रेणी में 27 की बात कहाँ आती है
अच्छा इसके लिए
केवली समुद्घात वो तो 20 और 20 आते हैं इसमें कुछ 27 की बात आ है यानी इतने सबका मिलकर भी काल उतना ही होगा ये बात कहना चाहते हैं अंतर्मूर्त इसी प्रकार अपगत वेदी अकशाई सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए यानी ये मोनी की सत्ता वाले ये जो जीव है उनमें जो अल्पतर बताया है उसमें तो अंतर पड़ता है उस अपेक्षा से यहाँ घटित होता है ऐसा भी हो सकता है कि अंत में जब मूल शरीर में आने के पहले आहार का युग आया एक समय के लिए रहा और बाद में आहारक का योग बदल कर अवदारिक का योग हो जावे, या मरण की भी अपेक्षा लगा सकते, दोनों भी हो सकते हैं। आहारक मिश्र का योगियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि यहाँ मरण नहीं है तो एक भी जीव इसमें होगा तो अंतर्मुहूर्त काल तक तो रहेगा ही, और वहां उसका अल्पतर ही होता रहेगा। आहार का युग में मरण हो सकता है और यहां नहीं हो सकता। वैक्रियक मिश्र का योगियों में मनुष्य अपर्याप्तकों के समान भंग है, क्योंकि वैक्रियक मिश्र है ये भी सांतर मार्गना है, उसमें अधिक से अधिक अंतर पड़े तो कितना पड़ता है वैक्रियक मिश्र में?
नहीं,
12 मूर्त। अभव्यों में 26 प्रकृतियों की अपेक्षा मत्य ज्ञानियों के समान भंग है, 26 ही होती है ना इनमें, इसलिए 26 प्रकृतियां लिया। मत्य ज्ञानियों में तो सभी कहेंगे 28 विशेषार्थ। आहारक का योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, उस काय योग का ही बताया, तथा इसमें सब प्रकृतियों का एक अल्पतर पद ही होता है। यही कारण है कि यहाँ सब प्रकृतियों के अल्पतर पद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। हाँ, आहार का योग एक समय के लिए भी हो सकता है, क्योंकि उसके दो कारण है, मरण की अपेक्षा भी हो सकता है और दूसरा कारण है कि आहार का योग में आया लास्ट में और मूल शरीर में फिर आ गया तो उसका योग बदल गया। वैसा आहारक मिश्र में नहीं होता, क्योंकि उसका अंतर्मूर्त तो होता ही है। इसी प्रकार अपगत वेद आदि मार्गणाओं में भी समझना चाहिए, किंतु आहारक मिश्र का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही है, अतः यहाँ सब प्रकृतियों के अल्पतर पद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाया है। वैक्रिक मिश्र का योग का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ये काल की बात है, हमने जो पहले पूछा था वो अंतर पूछा था। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का भी इतना ही काल है, जैसे हमने देखा था ना, अंतर भी उसमें उतना पड़ेगा, परंतु वैक्रियक मिश्र में अंतर पड़ेगा तो कितना पड़ता है 12 मुहूर्त का, और लगातार कोई ना कोई जीव उसमें उत्पन्न हो लगातार चले तो पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक, हर समय ने समय में कोई ना कोई जीव वैक्रिक मिश्र में आ रहा है। लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का भी इतना ही काल है, ये काल की बात चल रही है, इसके साथ हमने अंतर को भी जान लिया। अतः वैक्रिक मिश्र का योग का भंग लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों के समान बतलाया है। अभव्य मत्य ज्ञानी ही होते हैं, अतः इनका भंग मत्य ज्ञानियों के समान बतलाया है। एक बात कही कि 26 प्रकृतियों की, क्योंकि उनमें तो सम्यक तो होता ही नहीं, तो सम्यक तो सम्यक, मिथ्या तो प्रकृति की सत्ता कभी नहीं पाई जाएगी। उपशम सम्यक दृष्टियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उपशम सम्यक का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, एक ही जीव, क्योंकि ये भी सांतर मार्गना है, तो कोई जीव आया तो अंतर्मूर्त तक तो उपशम सम्यक में रहेगा ही, तो एक साथ एक जीव या अनेक जीव आ गए अंतर्मूर्त तक रहे, फिर अंतर पड़ गया तो जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा, और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। नाना जीवों की अपेक्षा चल रही, ये पूरा ही प्रकरण है काल का, वो नाना जीवों की अपेक्षा हो रहा है, क्योंकि हमने पहले एक जीव की अपेक्षा काल भी देखा, अंतर भी देखा, स्वामित्व भी देखा। ये नाना जीवों की अपेक्षा भंग, विजय, विचय, भागा भाग, प्रमाण, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब उसमें अनेक जीवों की अपेक्षा लगती है। तो उपशम सम्यक पर ये मार्गणा है, कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो लगातार कितने काल तक चलेगा, तो पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक। उसका उन्होंने ऐसा भी देखा था कि एक जीव कितना करता है, अंतर्मूर्त तक रहता है, एक जीव के लिए अंतर्मूर्त। अब उसका अंतर्मूर्त पूरा होते होते दूसरा जीव उसमें आएगा, ऐसा लेना। तो हमने अन्य मार्गणाओं में क्या लिखा था, पल्ले अवली के असंख्यात विभाग, तो अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव, और एक के बाद एक आएंगे, और हर एक के लिए अंतर्मूर्त, तो वो पल्ले का असंख्या तो अभाग हो जाता है। ख्याल में है नहीं बात? इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि के भी जानना चाहिए, क्योंकि वह भी सांतर मार्गणा है, उसका भी काल जो है पल्ले का असंख्या तो अभाग प्रमाण नाना जीवों की अपेक्षा घटित होता है, क्योंकि एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले का असंख्यात भाग, और उसमें भी हमेशा अल्पतर ही होता है। सासाधन सम्यक दृष्टियों में सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यपम के असंख्यात भाग प्रमाण है, ऐसा यहां भी लेना। सासाधन ये भी सांतर मार्गणा है। आप कहेंगे यहाँ तो एक समय भी घटित होता है, तो पल्ले का असंख्यात भाग कैसे होगा? तो वहाँ भी आवली के छह आवली तक का काल हो सकता है ना, उत्कृष्ट काल। कार्मण कायोगी और अनाहारकों में औदारिक मिश्र कायोगियों के समान भंग है।
सासाधन में अरंतानुबंधी का बंद होता है, तो वहाँ पे अल्पतरी बता है।
हाँ, आपका प्रश्न, अभी प्रश्न तो आपने पूछ लिया, समझ में आया? उन्होंने ऐसा पूछा है कि अभी सासाधन में आया तो अनंतानुबंधी का बंद होने लगा, ऊपर तो नहीं था, तो बंद होने लगा, तो पहले समय में तो हम अवक्तव्य कहेंगे, सत्ता नहीं थी और प्राप्त हुई, परंतु जब सासाधन कह रहे हैं, अपनी मार्गणा सासाधन है, उसका अर्थ है उसकी सत्ता है।
नहीं, सत्ता की अपेक्षा नहीं पूछा, बंद की अपेक्षा।
हाँ, बंद की अपेक्षा। तो यहाँ अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, परंतु कितना हो रहा है? अल्पतर तो होता ही है, उसका अर्थ क्या है? यहाँ जो बंद हो रहा है, तो जितनी सत्ता है अभी अंत कोड़ा कोड़ी की सत्ता है, समय समय से आया है, तो उसके उससे भी कम बंद हो रहा है। मिथ्यात्व में जाने के बाद उसका संकलेश बढ़ेगा, तब उसके अधिक बंद होने लगेगा, यानी जितनी सत्ता है उससे कम बंद हो रहा है, तो उसका अल्पतर होता है। हाँ। देखो औदारिक मिश्र की विशेषता बता, कार्मण का योगी हमने पढ़ा था, फिर पढ़ती हूँ। कार्मण का योगी और अनाहारकों में औदारिक मिश्र का योगियों के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति विभक्ति वाले जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण है। विशेषण, क्योंकि यहाँ पल्ले का असंख्यात भाग घटित नहीं होगा, आवली का असंख्यात भाग वाले ही घटित हो गए यहाँ पर, और यहाँ भी हमेशा ही होते, ऐसा नहीं कहेंगे। कार्मण का युग का काल ही किसी के एक समय, किसी के दो समय, किसी के तीन समय है।
इसे तो ये मार्गणा तो निरंतर है।
मार्गणा निरंतर है, परंतु सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ सकता है। बाकी एकेंद्रियों में भी निरंतर होते हैं जीव, सभी जीव समासों में है, अपर्याप्तों में भी है, औदारिक मिश्र में भी कायम पाए जाएंगे, क्योंकि वहां भी सभी अपर्याप्त जीव पड़े हैं ना, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के। तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाले तो हमेशा ही होंगे, अब कारमान का योग में तो अकेले उद्वेलना ही नहीं लेना, सम्यक दृष्टि भी ले सकते हैं, परंतु उसके लिए क्या है, अल्पतर कहने के लिए दो समय तो चाहिए ना, उसमें पहले समय से दूसरे में अल्प हो गया तो चौथे गुणस्थान वाले भी हो सकते हैं और दो समय वाले भी हो सकते हैं, परंतु उसमें अंतर पड़ सकता है, ये बात बताना चाहते हैं।
संख्या की अपेक्षा बताया कि संख्या कम होती है,
केवल संख्या की बात नहीं है,
नहीं सम्यक तो प्राप्त किया है और पीछे ये काल आता है।
देखो ये काल बहुत अल्प है, काल अल्प है, कारमान का योग वाले जीव हमेशा पाए जाएंगे, अनंत पाए जाएंगे, फिर भी उतने काल में वो उद्वेलना वाले जीव होने चाहिए उस समय, ये बात होती है ना उसमें विशेषार्थ। उपशम समय दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, इस मार्गणा का ही काल इतना है, अतः सब प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति का काल उक्त प्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टियों के भी जानना चाहिए, किंतु सासादन सम्यक दृष्टियों का जघन्य काल एक समय है, अतः यहाँ जघन्य काल एक समय बतलाया है। उत्कृष्ट काल पूर्ववत है, पूर्ववत है ने पल्ले का असंख्यात भाग, कारमण कायोग और अनाहारक जीवों का सर्वदा काल है, यही बात औदारिक मिश्र की है, जैसे वैक्रिक मिश्र सांतर है वैसे औदारिक मिश्र सांतर होगा कि नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि वो तो सारे लब्ध्य पर्याप्त उसी में पड़े, औदारिक मिश्र ही उनके तो औदारिक होता ही नहीं है, मनुष्य हो या त्रियंच हो, एक केंद्रीय से पंचेंद्रिय तक के लब्ध्य पर्याप्त सारे, या तो कारमान का योग कहेंगे पहले दूसरे समय में, या मिश्र का योग पाया जाएगा। अतः यहाँ सब प्रकृतियों के संभव पदों का काल औदारिक मिश्र के समान बन जाता है, किंतु सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति वालों के काल में विशेषता है। यह बात है कि एक जीव की अपेक्षा कारमण का योग और अनाहारक अवस्था का उत्कृष्ट काल तीन समय से अधिक नहीं है, और सम्यक्त तथा सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव असंख्यात होते हुए भी स्वल्प हैं। अब यदि उपक्रम काल की अपेक्षा विचार किया जाता है तो उपक्रम काल कहने कोई ना कोई जीव कारमण, देखो देखो अभी यहाँ वही एक्सप्लेनेशन देते हैं, इसको पहले पढ़ेंगे फिर दोबारा बताऊंगी मैं। उपक्रम काल की अपेक्षा विचार का अर्थ क्या है, कारमान का योग में कब आएंगे, मरण के पश्चात आएंगे, तो एक जीव आया, कौन सा जीव लेना है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला जीव लेना है, एक आया दूसरा आया तीसरा आया, तो ऐसे लगातार कितना हो सकता है, तो आवली के असंख्यातवे भाग से अधिक काल नहीं प्राप्त होगा, उसमें बाद में कारमान कायोगी वाले तो जीव पाए जाएंगे, परंतु ऐसा काल आएगा कि उसमें सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता न हो। अतः यहाँ उक्त दोनों प्रकृतियों की अल्पतर स्थिति वालों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। हाँ अभी आप पूछना, कारमण का योग कब होता है, विग्रह से जो अन्य भव में चला जाता है उसके होता है, तो उसका जघन्य काल एक समय है, एक जीव की अपेक्षा बता रहे, नाना जीवों की अपेक्षा कितना होगा काल, सदा काल हमेशा, क्योंकि कारमण का योग तो निरंतर मार्गणा है, परंतु यहाँ बात अकेले कारमण का योग की नहीं है, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता सहित कारमान का योग में आने वाले जीवों की है, उसमें अंतर पड़ सकता है। अन्य प्रकृतियों की सत्ता वाले जीव हमेशा ही कारमान का योग वाले होंगे, उसकी बात नहीं चल रही है पर। ख्याल में ही बात ये, इसलिए वहां आवली का लगातार अगर कोई ना कोई जीव आता रहे तो उसका काल है आवली का असंख्यात्वा भाग, बाद में उसमें अंतर पड़ेगा, यानी काल उतना ही घटित होगा। हाँ, अभी अंतर कितना पड़ सकता है वो बात आएगी, एक समय का भी हो सकता है क्योंकि नाना जीवन की अपेक्षा है लेना है। औदारिक मिश्र जो है, औदारिक मिश्र का योग किसके होता है, तो मनुष्य और तिरियंचो में होता है। कब होता है? शरीर ग्रहण करने के पहले समय से लेकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय तक औदारिक मिश्र होता है, बाद में वो औदारिक हो जाता है। तो जो सारे लब्धि अपर्याप्त जीव, एक इंद्रिय में ले लो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उन सारों को औदारिक मिश्र का योग ही होगा क्योंकि उसी अवस्था में उनका मरण होता है, उनकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है। तो उसपे पहले आयु का बंध भी करेंगे, मरेगी भी, औदारिक मिश्र में ही उनका काल, वो अंतर्मूर्त वाला जो यथायोग्य काल है उतना ही उनकी लाइफ स्पैन है, तो वो जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। तो वहां तो घटित होगा क्योंकि कोई ना कोई जीव वहां औदारिक मिश्र वाले है ही, और सभी में तो ये सत्ता वाले जीव है ही है, क्योंकि हमने देखा था तिर्यंच पर्याप्तकों में भी हमेशा सत्ता है, सदाकाल है, उसमें भी अल्पतर वाले सदाकाल देखे थे, परंतु कारमान योग में सदाकाल संभव नहीं है। यानी उनकी सत्ता वाले कारमान का योग में आएंगे तो ही ये संभव है, तो ऐसा तो नहीं बनेगा हमेशा, इसलिए उसमें अंतर बताया। वो अंतर कितना होता है वो अभी प्रकरण चलेगा अंतर का, अभी तो हम काल देख रहे हैं। तो लगातार कोई ना कोई जीव सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करते करते कारमान का योग में आया है, तो इसे लगातार कितने काल तक संभव है? आवली के असंख्यात विभाग काल तक। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ, अभी अंतर का प्रकरण आएगा।
पर्याप्त तो सभ्यक और सभ्यक हमेशा रहते हैं, सत्ता वाले जीव,
सत्ता वाले जीव हमेशा है,
और यहाँ पे कार्मण,
परंतु सत्ता सहित कार्मण का योग में आने चाहिए। औदारिक मिश्र तो बड़ा काल है और सभी पर्यायों में होता है, एक इंद्रिय अपर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, सभी में सदाकाल ही इनकी सत्ता वाले जीव हो गए, परंतु उनकी सत्ता वाले जीव मरकर कारमान का योग में आकर अन्य भव में चले जाए, ये बात लगातार नहीं हो सकती, उसमें गैप पड़ सकता है। ये पहले भी हमने देखा था, पहले ये बात आ चुकी है, जो अपने लिए थोड़ी अलग सी लगी, नई लगी, क्योंकि कारमान का योग वाले तो जीव अनंत है, हर समय कोई ना कोई वहां तो अनंत जीव कारमान का योग वाले है। देखो अगर हम पूरे लोकाकाश में देखेंगे तो मारणांतिक करने वाले, उपवाद करने वाले, कारमान का ये सारे सब भरा है, क्योंकि अनंत जीव कोई ना कोई हर समय मर ही रहे ना, तो उसमें अनंत जीव है। अब अंतर देखेंगे, देखो अंतरम, अब अंतरानुगम का अधिकार है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका फल अधिकार का संभालना मात्र है, यानी कौन सा अधिकार चल रहा है उसकी बात यहाँ बता रही। सम्मत सम्मा मिच्छत्ताणम गुजगार अवत्तव ठिदि विहत्ति अंतरम केवचिरम कालादो होदी। अब हमको काल का जब अभी भूल जाओ, अभी तक हमने कितने काल तक हो सकता है नाना जीवों की अपेक्षा, अब उसमें अंतर कितना पड़ता है वो बात बता रहे हैं। तो हमने देखा था सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व का अल्पतर तो हमेशा ही होगा, सदा काल है, जो सदा काल होता है उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो अंतर किसमें किसमें हो सकता है, तो यहाँ पूछ रहे हैं सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की गुजगार और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का अंतरकाल कितना है। यह सूत्र भी सुगम है, तो उसका उत्तर देते हैं जघन्येन एक समौ, जघन्य अंतरकाल एक समय है। हमने देखा था कोई उद्वेलना कर रहा है तो उसका अल्पतर चल रहा था और उसके बाद उसने बुजगार किया, भुजगार का अंतर चल चाहिए,
भुजगार एक समय के लिए किया और एक समय के पश्चात अंतर एक समय के लिए पड़ेगा। और दूसरे समय
हाँ भुजगार किया और फिर अंतर हुआ और फिर भुजगार करना चाहिए उसको, भुजगार करके अंतर किया और फिर भुजगार करना, हाँ तभी वो अंतर घटित होगा।
क्योंकि दृष्टि कोई होगा,
हाँ क्योंकि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के भुजगार और अवक्तव्य के साथ सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों का जघन्य अंतरकाल एक समय मात्र पाया जाता है। देखो उसका विशेषार्थ बता रहे हैं, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के प्रथम समय में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अवक्तव्य स्थिति होती है। अब यदि प्रथम और तीसरे समय में बहुत से जीव, अच्छा नाना जीवन की अपेक्षा, हम एक जीव की अपेक्षा घटित करना चाहते हैं ना, एक जीव की अपेक्षा तो उसमें अंतर एक समय वाला घटित ही नहीं होगा, दोबारा मिथ्यात्व में जाके फिर समय तो प्राप्त करेगा तो अंतर होगा। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात है, किसी जीव ने एक समय में भुजगार किया वो एक ही समय के लिए रहता है, दूसरे समय में किसी ने भी नहीं किया और तीसरे समय में फिर किसी ने प्राप्त किया, तो भुजगार का नाना जीवों की अपेक्षा एक समय, मैं भी एक ही जीव की अपेक्षा सोच रही थी। हाँ क्या कहते हैं विशेषार्थ फिर पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के प्रथम समय में सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की भुजगार और अवक्तव्य स्थिति होती है। अब यदि प्रथम और तीसरे समय में बहुत से जीव उक्त पदों के साथ सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए और दूसरे समय में नहीं हुए तो उक्त पदों का जघन्य अंतरकाल एक समय प्राप्त हो जाता है। ये बात ख्याल में आई, किसी न किसी जीव ने भुजगार या अवस्थित के साथ सम्यक तो प्राप्त किया, बाद में उसका तो अल्पतर चलेगा उन जीवों का, उसके पश्चात वाले समय में किसी भी ने नहीं किया और फिर तीसरे समय में और किसी ने सम्यक तो प्राप्त किया वो भुजगार या अवक्तव्य के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, भुजगार का अंतर एक समय के लिए घटित होगा। उपकस्य न 24 मोहरत्ते साधिरेगे, उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है, क्योंकि यहाँ हर जगह उपशम समय तो जो मार्गणा है सांतर मार्गणा उसका अंतर जो है वो 24 दिन रात बताया है।
ये तो अवक्तव्य के लिए होगा, के भुजगार के लिए भी ले सकते हैं।
हाँ भुजगार के लिए भी ले सकते हैं, दोनों के लिए चल रही ना बात, कोई भुजगार करके प्राप्त करेगा और कोई अवक्तव्य करेगा, एक ही बात है, यानी कोई अनादि मिथ्या दृष्टि होगा या कोई सादी मिथ्या दृष्टि है कि सत्ता में है और उसने भुजगार किया, और जो सत्ता में नहीं है उसने किया तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। ख्याल में आई बात, थोड़ी है सत्ता भी, उद्वेलना पूरी नहीं हुई और उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो उसको भुजगार कहेंगे, और जिसकी सत्ता ही नहीं है उसने प्राप्त किया तो उसको अवक्तव्य कहेंगे। कैसा भी करने दो उसका उत्कृष्ट अंतर तो कितना होगा, 24 दिन रात।
हमने अभी तक देखा तो पहली बार जो प्राप्त करता है 26 की सत्ता वाला उसकी अपेक्षा से देखा था ना?
नहीं ऐसा नहीं है, 26 की सत्ता वालों की अपेक्षा अंतर नहीं है, ये उपशम सम्यक्त्व का अंतर 24 दिन रात।
उपशम सम्यक्त्व का अंतर तो वो जो 28 की सत्ता वाला तो वेदक से व्यक्त तो उसको तो उसका
28 की सत्ता वाला भी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, है ना, क्योंकि उद्वेलना करते करते उसने बहुत सारा घटाया है, अभी थोड़ा बाकी है उसका
सागर तक,
तो दर्शनों की 3 और अनंतानुबंधी 4 एक साथ 7 का उपशम करता है। हमने ये भी देखा था सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना पूरी हुई है और सम्यक्त्व की उद्वेलना पूरी होती है पहले और सम्यक मिथ्यात्व बाकी है और उसका एक ही समय बाकी है, तो भी वहां पर भी उपशम सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है, ये पहले हमने देखा, तो उसके बारे में वो अवक्तव्य कहलाएगा या भुजगार कहलाएगा जो कुछ है। यहाँ बात किसकी हो रही, अंतर किसका देख रहे हैं हम, उपशम सम्यक्त्व का अंतर, वो कैसे प्राप्त किया वो यहाँ का विषय नहीं है। कौन से जीव ने किया है, ये भुजगार के साथ किया है या अवक्तव्य के साथ किया, उसका अंतर कितना है, तो 24 दिन रात।
तो भुजगार के का भी अंतर 24 दिन रात,
हाँ।
और
अवक्तव्य के लिए भी 24 दिन रात। दोनों को सेपरेट ही लेना है, एट अ टाइम तो नहीं लेना है। हो सकता है एट अ टाइम कोई भुजगार कर रहा है, कोई अवस्थित कर रहा है, ये भी हो सकता है।
नहीं, अवस्थित नहीं, अवक्तव्य की बात है ना।
सॉरी, अवक्तव्य मुझे कहना था, अवस्थित नहीं, अवक्तव्य कहना था। तो उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है। शंका, पहले सामान्य से सम्यक्त्व के ग्रहण का अंतरकाल 24 दिन रात कहा, ये आपका प्रश्न है। सामान्य से यानी इन जनरल बात की 24 दिन रात। अब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति के साथ सम्यक्त्व और ग्रहण का अंतरकाल भी उतना ही कहा जा रहा है, सो यह कैसे बन सकता है, ये प्रश्न चिन्ह लगाना है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ भुजगार और अवक्तव्य स्थिति विभक्तियों का अंतरकाल केवल 24 दिन रात न कहकर साधिक 24 दिन रात का साधिक लिख दिया वहां पर। यानी 24 दिन रात में तो कोई ना कोई करेगा। अब अकेले भुजगार 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 देखो तो साधिक 24 दिन रात होता है, यानी उसका अंतर बढ़ जाए। दोनों का मिलकर देखना है तो 24 दिन रात, अकेले एक एक का देखना है तो साधिक 24 दिन रात। वो साधिक का प्रमाण केवल ही भगवान जान रहे हैं। नहीं समझे, देखिए औदारिक सॉरी वैकृत मिश्र का अंतर कितना है, उत्कृष्ट
12
मुहूर्त। अकेले नारकियों में वैकृत मिश्र का अंतर 24 मुहूर्त, अकेले देवों में 24, दोनों का मिलकर
12।
वैसे यहाँ दोनों का मिलकर अंतर कितना है, उपशम समय तो 24 दिन रात। अकेले भुजगार का साधिक 24 दिन रात, उसका डबल नहीं किया यहाँ पर। अवठिद ठिदि विहत्ति अंतरम केवचिरम कालादो हो दी। अवस्थित स्थिति विभक्ति का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। अवस्थित का लगातार काल नहीं पूछ रहे, लगातार काल तो उसका
अवलिका संख्या तो बाद में जो हम एक समय से लेकर अवस्थित का,
कोई अवस्थित में आएंगे तो दो समय के लिए नहीं, एक समय और एक समय, एक समय घटित होगा।
और उत्कृष्ट अवलिका संख्या तो बाद,
यह सूत्र सुगम है। तो कहते यहाँ तो अंतर की बात चल रही, अवस्थित किया बाद में अंतर पड़ा फिर अवस्थित किया, तो जघन्य न एक समो, जघन्य अंतरकाल एक समय है, यह सूत्र भी सुगम है। तात्पर्य यह है, ये कौन से प्रकृतियों की बात चल रही है, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की। यह पद भी सम्यक दर्शन को ग्रहण करने के प्रथम समय में हो सकता है। अब यदि नाना जीवों ने इस पद के साथ पहले और तीसरे समय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और दूसरे समय में नहीं किया, तो इसका जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो जाता है। ये बात ख्याल में आई, किसी ने किसी अवस्थित के साथ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, दूसरे समय में किसी ने नहीं किया, तीसरे समय में और किसी एक या अधिक जीवों ने प्राप्त किया, तो उसका अवस्थित का अंतर एक समय। उक्कस्येन अंगुलस्य असंख्येन यदि भागो, वहां तो साधिक 24 दिन रात कहा था भुजगार और अवक्तव्य के लिए, क्योंकि वहां उपशम सम्यक्त्व का अंतर घटित करना था वहां पर। यहाँ कहते उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि सम्यक्त्व की स्थिति से मिथ्यात्व के एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म को छोड़कर संख्यात हजार सागर प्रमाण शेष स्थिति सत्कर्म के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीवों के अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र अंतर के होने में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं, मिथ्यात्व की स्थिति एक समय अधिक हो तो क्या होगा?
अवस्थित हो जाएगा।
जब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो अवस्थित बन जाएगा, बराबर है। अब उस स्थिति को छोड़ना तो कौन सी लेना, दो समय अधिक ले लो, तीन समय अधिक ले लो, चार समय अधिक ले लो, पांच समय अधिक ले लो, कोई ना कोई जीव उन स्थितियों के साथ सम्यक तो प्राप्त करेगा। तो कितनी स्थितियों तक लेना है, तो संख्यात हजार सागर प्रमाण। संख्यात हजार क्यों लिया?
क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी कर,
अंत कोड़ा कोड़ी है ना, ये 28 की सत्ता वाला है और सम्यक तो प्राप्त करने वाला है। तो 28 की सत्ता वाला है यानी सम्यक तो में से वो मिथ्यात्व में आया हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग में तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है, बाद में उद्वेलना के द्वारा जितनी जिनकी घटेगी उतनी होगी। तो उसमें स्थितियों के सभी विकल्प हो सकते हैं। कौन सी छोड़कर? एक समय अधिक स्थिति को छोड़कर, यानी मिथ्यात्व की एक समय अधिक चाहिए। अब यहाँ क्या हो सकता है, दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है? दो समय अधिक, तीन समय अधिक, चार समय अधिक, क्योंकि मिथ्या उसकी सत्ता कितनी है और नया बंध कितना हो रहा है उस पर निर्भर है। ख्याल में आते ही ना बात,
दोनों का नया बंध भी है, अंत कोड़ा कोड़ी होना चाहिए और उसकी सत्ता भी इतनी होनी चाहिए, नहीं तो बढ़ जाएगा ना।
वही तो कहना चाहते हैं, यानी वहाँ तो भुजगार हो सकता है,
वहाँ पे भुजगार हो जाए,
यही है। यहाँ तो अवस्थित का अंतर घटाना है। अवस्थित के लिए कंडीशन क्या है? एक समय अधिक वाली चाहिए,
सत्ता और बंध की दोनों की अपेक्षा।
हाँ,
दोनों की अपेक्षा।
बंध तो छोटा ही होगा, यानी स्थिति कांडक करने के कारण एक समय अधिक हुआ है उसका। स्थिति कांडक तभी संभव है जब नया बंध कम हो रहा है। यही बात। अब उस जीव को छोड़ना, तो अन्य अन्य जीव सम्यक तो प्राप्त करेंगे, तो कितना डिफरेंस के साथ? दो समय अधिक वाले हो सकते हैं, तीन समय अधिक हो सकती है, यानी इसकी मूल में अंत कोड़ा कोड़ी होगी तो भी मिथ्यात्व की ज्यादा है ना, तो डिफरेंस कितना होगा? तो संख्यात हजार सागरों का होगा। तो एक समय अधिक स्थिति सत्कर्म को छोड़कर किसकी स्थिति चल रही है? मिथ्यात्व की स्थिति कितनी अधिक होनी चाहिए? एक समय अधिक को छोड़कर अन्य सभी, तो उसका अवस्थित नहीं होगा, हाँ बुझकर होगा। तो शेष स्थिति सत्कर्म के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के, यानी जितनी स्थितियां है उतने उतने स्थिति के साथ सम्यक्त को प्राप्त हो रहा है कोई ना कोई जीव, ऐसा लेना। तो जितनी स्थितियां होगी उतने समय घटित करना वहां पर,
ठीक है। शुक्ल लक्ष्य वाला एक प्राप्त कर सकेगा, अवस्थित अवस्थित वाला जो ये भेद होता है वो शुक्ल लक्ष्य में हो सकता है, क्योंकि पीत पद्म में जाएगा तो उसका बंध ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुक्ल लक्ष्य में हमने बंध
देखो बंध कम होने के लिए शुक्ल लेशा होना जरूरी नहीं है, नहीं तो नरकों में अवस्थित भंग होता ही नहीं। ख्याल में आएगा? अवस्थित सम्यक तो और सम्यक मिथ्यात्व का अवस्थित कौन कौन से गतियों में हो सकता है?
चारों गति
में। तो मिथ्यात्व का जो नया बंध है वो ऐसे भी कम हो सकता है ना, उसमें जीवों के जो संक्लेश के वेरिएशंस है तो उसमें मिथ्यात्व का बंध कभी ज्यादा है कभी कम है। जब कम होता है जितनी सत्ता है उससे कम बंध होता है तो वहां कांडघात भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो विशुद्धि हो रही है ना, उसकी सम्यक तो प्राप्ति के पहले की विशुद्धि है, उसके द्वारा वहां कांडघात संभव है। देखो हमने पहले क्या देखा था, एक समय वाली ज्यादा स्थिति होगी, हमने देखा इसके पांच है स्थिति और उसके चार है, तो जब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो अवस्थित ही रहेगा, क्योंकि उसकी चार समय वाली स्थिति थी, इसकी पांच समय वाली थी। अब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो उसका वो पहला निषेक उदय में आएगा और मिथ्यात्व की जो एक अधिक स्थिति थी वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, तो समान ही रहेगी। ये पहले हमने देखा था, तो उसको छोड़ो, उसके बिना अन्य कितने कितने पॉसिबिलिटीज है। दो समय अधिक वाला अगर लेते हैं तो जब सम्यक तो प्राप्त करेगा तो उसका एक समय से अधिक बढ़ेगी सत्ता, तो उसको भुजगार कहेंगे। तीन समय अधिक, चार समय अधिक, पांच समय अधिक, कितना अधिक हो सकता है? दोनों अधिक का अर्थ क्या, दोनों का डिफरेंस कितना हो सकता है?
वहाँ पे तो संख्या,
तो उसके लिए संख्या हजार सागर कहा, संख्या हजार सागर कहे ना डिफरेंसेस, तो उनके अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र अंतर के होने में कोई विरोध नहीं आता। अब शंकाकार की शंका क्या है? उत्कृष्ट अंतर संख्यात हजार सागर प्रमाण ऐसा न कहकर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है ऐसा किस लिए कहा है? वहां भी संख्यात हजार सागर कहना था। बात ख्याल में आई? संख्यात हजार सागर की डिफरेंसेस है ना, उतनी अलग अलग स्थितियां हो सकती है, तो उतनी स्थितियां हो सकती है तो उतने समय बताओ। अंगुल का असंख्यात भाग तो उसके असंख्यात भाग में असंख्यात संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी होती है। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की स्थिति से मिथ्यात्व की दो समय अधिक आदि स्थितियों के द्वारा पुनः पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले जीवों के बहुत अंतर पाया जाता है।
ये बहुत भी अंगुल के असंख्यात भाग से ज्यादा पता है?
नहीं, संख्यात हजार स्थितियों से ज्यादा। नहीं समझे? देखो ऐसा तो नहीं ना हर एक जीव एक एक समय की उत्कृष्ट स्थिति के साथ ही प्राप्त होगा। कोई ना कोई जीव सम्यक्त को प्राप्त होगा। किसी के दो समय अधिक है, किसी के दस समय अधिक है, किसी के पचास समय अधिक है, फिर मान लेते दस समय अधिक वाले और भी कोई ना कोई प्राप्त तो होगा, परंतु हर एक में अलग अलग स्थिति ही होगी। ये कहाँ होती है? उसमें पुनरुक्त भी होगी ना बहुत बार, तो उसका अगर काल गिनेंगे तो अंगुल का असंख्यात भाग बन जाता है। यानी अंगुल के असंख्यात भाग काल तक एक समय अधिक वाली स्थिति के बिना अन्य ही स्थितियों के साथ जीवों ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की है, तो उनमें अवस्थित नहीं घटेगा, किसी का भुजगार होगा जो कुछ होगा।
यहाँ पे जिसने उद्वेदा कंडक चालू किया है उसके पश्चात भी उसकी अवस्थित हो सकती है, क्योंकि विशुद्धि बढ़ेगी।
हाँ?
ज्यादा विशुद्धि के साथ
वो उद्वेलना कंडक वाले की ऐसी कोई बात नहीं, उसकी कितनी है जितनी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की उससे एक समय ज्यादा वाली हो तो ही अवस्थित बनेगी। उसमें डिफरेंस कितना है इतना ही अपना ख्याल में लेना है, दोनों में डिफरेंस कितना है। उसको एक समय अधिक वाली स्थिति कहा या दो समय अधिक वाली, तीन समय, एक समय के अलावा उसको छोड़कर बाकी सभी डिफरेंस पॉसिबल है। देखो फिर शंका, एक एक स्थिति के अभी जो स्थिति बनने के योग्य जो परिणाम होते हैं उसका नाम क्या है? स्थिति बंध व्यवसाय स्थान। क्या कहा? जो कोई संकलेश है विशुद्धि होगी, विशिष्ट स्थिति बंधने के कितने अलग अलग परिणामों के कारण उतनी ही स्थिति बन सकती है, तो असंख्यात लोक उसमें हमने देखा था, उसी में भी असंख्यात लोक बार स्थान प्रति वृद्धि के स्थान है, वो बात छोड़ो। तो एक एक स्थिति के बंध के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक है, जिसको कहते स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। तो शंका क्या है? एक एक स्थिति के असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान होते हैं, अतः उन सब का अंतर कराने पर अंतर का प्रमाण असंख्यात लोक प्राप्त होता है। ज्यादा अंतर करो ऐसा कहते, पहले कहता था संख्यात हजार वर्ष ही करो, अब कहते हैं असंख्यात लोक। यह असंख्यात लोक बड़ा है कि अंगुल का असंख्यात भाग बड़ा है?
असंख्यात लोक तो बहुत बड़ा है।
अंगुल का असंख्यात भाग कितना छोटा होगा? और लोक कितना बड़ा है और उसको भी असंख्यात गुणा करो। इसका कहना क्या था? पहले तो कहता था संख्यात हजार वर्ष इतना ही कहो, अब कहते असंख्यात लोक कहो। उसका कारण क्या बताया? एक एक स्थिति के लिए कारणभूत परिणाम जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान होते हैं अलग अलग। इसलिए यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण अंतरकाल की प्ररूपणा क्यों नहीं की? समाधान नहीं, क्योंकि स्थिति के अंतर का कथन करने पर प्रकृति स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों के द्वारा सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के स्थिति का अंतर प्राप्त होता है। किंतु परिणामों के अंतर की अपेक्षा कथन करने पर असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होता है। क्या कहते हैं? ये परिणाम कितने होते उसकी यहाँ चर्चा ही नहीं है। परिणामों का अंतर देखना है तो असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होगा, परंतु प्रकृतियों के स्थिति जितनी है, भले किसी भी परिणाम के कारण क्यों न बंधे, तो स्थितियों में अंतर अगर घटित करना है तो वह अंगुल का असंख्यात भाग होगा। क्योंकि परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण पाए जाते हैं, परंतु स्थिति विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है। स्थिति विकल्प यानी जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति, उसको स्थिति विकल्प कहते हैं। उसमें तो इतना डिफरेंस, इतने वेरिएशंस नहीं है, उसने उतने स्थान नहीं है। परिणामों में उतने स्थान है, परंतु स्थितियों में इतने स्थान नहीं है, जिससे स्थित्यंतर असंख्यात लोक प्रमाण हुए। स्थित्यंतर ने स्थिति में अंतर, अलग अलग स्थितियां असंख्यात लोक प्रमाण नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि परिणाम भेद से नियमतः स्थितिबंध में भेद नहीं होता। हमने देखा था विशिष्ट स्थिति बंधने वाले जो उसकी रेंज है वो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब परिणाम पलट गए तो भी क्या स्थिति बंध पलटेगा? जरूरी नहीं है, उतनी ही स्थिति बंधेगी। एक पहले परिणाम से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण तक के अलग अलग परिणाम होते रहे तो भी स्थिति उतनी ही बन सकती है। हमने देखा है ना, अंतर्मूर्त तक वही के वही स्थिति बन सकती, स्थिति बंध उतना ही रहेगा, परंतु क्या उसमें परिणाम कितने वेरिएशन हो सकते हैं असंख्यात लोक प्रमाण? आप जो बता रहे हैं ना, आबाधा कांडक बता रहे हैं आप। विशिष्ट आबाधा के लिए अलग अलग स्थितियां कितनी हो सकती है वो पल्ले की असंख्यात विभाग। अब यहाँ बात चल रही है एक ही स्थिति के लिए कारणभूत परिणाम कितने हो सकते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ आबाधा कांडक की बात नहीं, उतनी स्थिति बांधी, किसी ने और बांधी, किसी ने और अन्य बांधी, उसकी बात चल रही है। क्या कहते हैं? परिणाम भेद से, परिणाम पलट जाने से जरूरी नहीं कि स्थिति बंध भी पलट जाए, ये बात बताना चाहते। तो परिणाम भेद से नियमतः स्थिति बंध में भेद नहीं होता, हो भी सकता है परंतु होगा ही, ये नियम नहीं है। हमने देखा संकलेश क्षय से परिणाम बंध पलट जाता है, पलट जाता है, परंतु जो असंख्यात लोक प्रमाण की रेंज है उसके बाहर वाला अन्य परिणाम होगा तो स्थिति अन्य बंधेगी, परंतु परिणाम पलट गया इसलिए स्थिति अधिक या कम बंधे ये बात जरूरी नहीं है। इसलिए नियमतः उसमें कोई वेरिएशन होगा ही, ये बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय प्रमाण स्थानों के द्वारा एक ही स्थिति का बंध पाया जाता है। अतः स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों का अंतर कराने पर भी स्थित्यंतर अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है। यानी वो स्थानों का अंतर भी करेंगे तो भी स्थिति में अंतर कितना हो सकता है? अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। यही कारण है यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण अंतरकाल की प्ररूपणा नहीं की, इसी का विशेषार्थ अभी दोबारा बताएंगे। यहाँ सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाया है। सो इनमें से जघन्य अंतरकाल एक समय तो स्पष्ट ही है, यानी किसी ने अवस्थित के साथ प्राप्त किया, दूसरे समय में किसी ने भी नहीं किया, तीसरे समय में और किसी ने किया, तो जघन्य अंतर एक समय होगा। अब रही उत्कृष्ट अंतरकाल की बात, सो इसका खुलासा करते हुए वीरसेन स्वामी ने स्वयं दो शंकाएं उठाई हैं। पहली शंका तो यह है कि जब स्थिति के कुल विकल्प टोटल विकल्प संख्यात हजार सागर प्रमाण है, तब उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात हजार सागर प्रमाण होना चाहिए। बात यह है कि जो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति से मिथ्यात्व की एक समय अधिक स्थिति वाला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, उसके सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के प्रथम समय में उक्त दोनों प्रकृतियों की अवस्थित स्थिति विभक्ति होती है। किसके होती है वो तो उन्होंने पहले बता दिया, और उसके कंडीशन उसके लिए आवश्यक है कि मिथ्यात्व की स्थिति एक समय से अधिक होनी चाहिए। यदि इससे अधिक स्थिति वाला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है तो उसके अवस्थित स्थिति विभक्ति नहीं होती। डिफरेंस ज्यादा है तो उसकी कौन सी होगी, भुजगार। अब यदि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की एक बार अवस्थित स्थिति के बाद जीव सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की स्थिति से मिथ्यात्व की दो समय अधिक स्थिति के साथ निरंतर सम्यक दर्शन को प्राप्त होते रहे, होता रहने का होते रहे, क्योंकि एक ने तो प्राप्त किया है, यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, एक जीव की अपेक्षा अंतर घटित नहीं कर रहे, फिर दोबारा दूसरा जीव आया, फिर तीसरा आया, निरंतर अगर कोई प्राप्त होता रहे तो स्थिति के जितने विकल्प है उतनी बार ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर एक ने अलग अलग स्थिति के साथ प्राप्त किया, यहाँ तो रिपीटिशन भी नहीं लिए, मान लेते हैं हर एक ने अलग अलग स्थिति के साथ सम्यक तो प्राप्त किया, एक्सेप्ट एक समय अधिक वाली को छोड़कर कोई जीव निरंतर होते रहे, एक अधिक वाले ने प्राप्त किया अवस्थित, उसके पश्चात वाले निरंतर, ने हर समय में कोई ना कोई जीव प्राप्त हो रहा है, उसमें दो समय अधिक वाला है, फिर तीन समय अधिक वाला, चार समय अधिक वाला, जरूरी नहीं कि क्रम से हो, दो के बाद दस भी ले लो, फिर तीन वाला ले लो, फिर पंद्रह वाला ले लो, फिर यानी अलग अलग स्थिति से ही प्राप्त किए। तो स्थितियों के जितने विकल्प हो, डिफरेंस वाला जो एक से अधिक को छोड़कर बाकी जितना हो, उतनी बार ऐसा हो सकता है। तदनंतर अवश्य ही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति प्राप्त हो जाएगी।
यहाँ पे तो आपने बताया विकल्प तो संख्यात हजार सागर प्रमाण ही है।
हाँ।
तो यहाँ पे ऐसे बताया कि संख्यात हजार सागर प्रमाण बार अलग अलग विकल्प प्राप्त होते रहे तो उसके पश्चात तो यही स्थिति वाला
होगा ही, यानी हाँ उससे अधिक अंतर नहीं पड़ेगा।
तो पीछे वो अंगुल का असंख्यात भाग कैसे घटित
हो, वही तो अंगुल का असंख्यात भाग ही उसमें घटित हो सकता है, यानी ये तो शंका बता रही, शंका करके शंका चल रही यहाँ पर कि संख्यात हजार ही होने चाहिए, ज्यादा क्यों बता रहे, शंका करके शंका बता रहे, ये हो जाएगी, ये शंका है। अतएव अवस्थित स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात हजार सागर से अधिक प्राप्त नहीं होना चाहिए, यह पहली शंका, ये शंका बता रहे। ज जिसका वीरसेन स्वामी ने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि जो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाले जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को प्राप्त होते हैं, उनमें दो समय अधिक आदि स्थितियों के साथ सम्यक्त्व को जीव पुनः पुनः प्राप्त होते रहते हैं, यानी विशिष्ट स्थिति दो समय वाली अधिक हो, किसी के चार समय वाली हो, किसी हमने जो पहले बताया था, तो उतनी स्थिति के साथ बहुत बार हो गए ना कोई जीव, जरूरी नहीं कि हर एक अलग अलग स्थिति के साथ ही चढ़े प्राप्त हो,
एक ही स्थिति के लिए
एक ही स्थिति में कितनी बार हो गए ना जीव, मान लेते हजारों बार तो उतनी स्थिति के साथ उसको प्राप्त हो जाए अलग अलग समयों में, भले हर समय कोई ना कोई जीव प्राप्त होता रहे। इसलिए अवस्थित स्थिति का अंतरकाल संख्यात हजार प्रमाण प्राप्त न होकर अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण प्राप्त होता है। दूसरी शंका का भाव यह है कि एक एक स्थिति के स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, यानी उसके बंध के परिणाम जो है, यहाँ परिणामों की बात है, तथा कुल स्थिति विकल्प संख्यात हजार प्रमाण होते हैं, हाँ संख्यात हजार सागर प्रमाण होते हैं। अब यदि सब स्थितियों के बंध के योग्य स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों का अंतर कराया जाता है, यानी अन्य अन्य परिणाम होते रहे, तो उसका अगर अंतर करेंगे तो वह असंख्यात लोक प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ अवस्थित स्थिति का उत्कृष्ट अंतर, ये शंका चल रही है, अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण न कहकर असंख्यात लोक प्रमाण कहना चाहिए। इस शंका का वीरसेन स्वामी ने दो प्रकार से उत्तर दिया है। पहले उत्तर का भाव यह है कि यहाँ परिणामों का अंतर नहीं दिखाना है किंतु स्थितियों का अंतर दिखाना है। दूसरी बात यह है कि परिणामों में भेद होने से कर्म स्थिति में भेद होने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के द्वारा एक ही स्थितिबंध पाया जाता है। ये बात ख्याल में आई? हाँ, हमने यहाँ लिए थे ना, आप थे अभी थोड़े दिन पहले हुए थे ना, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में अनुकृष्टि रचना कैसे होती है, हाँ वो यहाँ होती है, वो तो बताना नहीं है ना, हर एक के अलग अलग भी ले लो, वहाँ तो ओवरलैप होते चले जाते हैं, परंतु अलग अलग भी ले लो तो उतना अंतर तो पड़ता नहीं, ये बात बताना। एक ही स्थितिबंध के कारणभूत परिणाम कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब इन्हीं सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर कहने जा रहे हैं, कितना हो सकता है?
निरंतर
होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, कौन से वेदक और उपशम, उसमें भी होगा और उद्वेलना वालों में भी, ये अल्पतर वाला भंग होगा। अपदर स्थिति विहत्ति अंतरम केवचिरम कालादो होदी, अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर काल कितना है यह सूत्र सुगम है। नथ्य अंतरम, अल्पतर स्थिति विभक्ति का अंतर काल नहीं है, क्योंकि अल्पतर स्थिति विभक्ति को प्राप्त सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व सत्कर्म वाले जीवों का विरह नहीं पाया जाता। ये सत्कर्म वाले जीव कौन है? सम्यक दृष्टि भी है और उद्वेलना करने वाले मिथ्या दृष्टि भी है। सम्यक दृष्टि में क्षायिक को छोड़ना, हाँ, तो मिथ्यात्व अवस्था में भी वो हमेशा पाए जाएंगे सत्ता वाले। शेषाणम कम्माणम सव्यसिम पदाणम नथ्य अंतरम, इसी प्रकार शेष कर्मों के सब पदों का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि ये अनंत हुआ है, अनंत करना है। ओवर की अपेक्षा बात चल रही है, तो हमने तो देखा था एक इंद्रिय में भुजगार अल्पतर और अवस्थित तो हमेशा ही पाई जाती है, तो जो हमेशा सदाकाल है उसमें अंतर नहीं घटित होगा, क्योंकि अनंत एक इंद्रियों में शेष सभी कर्मों की भुजगार अल्पतर और अवस्थित स्थिति विभक्तियां सदा पाई जाती हैं। अब उसमें क्या डिफरेंस है बताएंगे। नवरी अनंतानुबंधिनम अवत्तवठिदि विहत्ति अंतरम जहन्नेन एक समयो। किंतु इतनी विशेषता है, यानी अनंतानुबंधी में भी भुजगार अल्पतर और अवस्थित सदा ही पाए जाएंगे, एक इंद्रियों की मुख्यता लेना है वहां पर, परंतु अनंतानुबंधी में तो चार पद होते हैं, तो इसलिए कहते हैं इतनी विशेषता है अनंतानुबंधियों की अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय है। नाना जीवन की अपेक्षा बता रहे ना, किसी ने विषय योजना के बाद वो मिथ्यात्व में आया या सासाधन में आया, संयोजना हुई तो उसका अवक्तव्य हुआ, दूसरे समय में किसी ने भी नहीं किया और फिर तीसरे समय में किसी ने किया, क्योंकि जिन सम्यक दृष्टियों ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना कर दी है उनके मिथ्यात्व को प्राप्त होने के प्रथम समय में ही अवक्तव्य स्थिति विभक्ति पाई जाती है, इसलिए इसका जघन्य अंतरकाल एक समय बन जाता है। उक्कसेन 24 महोरत्ते साधिरेगे, उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है। क्योंकि सम्यक्त को प्राप्त होने वाले जीवों के अंतरकाल के साथ मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीवों का अंतरकाल समान है, इस प्रकार यति वृषभ आचार्य के मुख से निकले हुए देशामर्च, ये क्या कहना चाहते हैं, जितने जीव मिथ्यात्व में से सम्यक्त को प्राप्त करते हैं उतने ही सम्यक्त में से वो मिथ्यात्व में जाते हैं। हाँ, वो उन्होंने बाद में घटाया था विषय योजना करने वालों में, फिर पहले हमने चार बातें ऐसे घटित करके देखी, यहाँ तो जनरल कथन क्या है, जितने सम्यक्त को प्राप्त करते हैं उतने ही मिथ्यात्व को आते हैं। हाँ? हाँ, उतनी संख्या में, इक्वल नंबर। इस प्रकार यति वृषभ आचार्य के मुख से निकले हुए देशामर्चक चूर्णी सूत्रों के अर्थ का कथन करके वीरसेन स्वामी ने उसका कथन किया। अब उसके द्वारा सूचित होने वाले अर्थ का कथन करने के लिए उच्चारणा का अनुगम करते हैं, यानी उच्चारणा के आधार से वीरसेन स्वामी उसका अर्थ लिखते हैं। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों के 3 पदों का अंतरकाल नहीं है। अनंतानुबंधी के भी वो 3 पद हमेशा होंगे, परंतु उसमें एक एक्स्ट्रा है। अनंतानुबंधी चतुष्क का इसी प्रकार जानना, किंतु इतनी विशेषता है अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है। साधिक कह दिया, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की अल्पतर स्थिति का अंतरकाल नहीं है। भुजगार स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 24 दिन रात है। हमने देखा था ना, भुजगार और अवस्थित, किसी का भुजगार होगा किसी का अवस्थित होगा, इसलिए साधिक कहा। इसी प्रकार अवक्तव्य स्थिति विभक्ति का भी कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, यानी कथन दोनों के लिए सेम होगा। अवस्थित स्थिति विभक्ति का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण है।
अंगूर का असर क्या था बात?
हाँ, अभी यहाँ दूसरी अपेक्षा बताएं, शंका। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्थित स्थिति भक्ति का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण क्यों है, प्रश्न चिन्ह करना। समाधान, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों का अंतर कराने पर वह अंतरकाल प्राप्त होता है। तो शंकाकार छोड़ने वाला है थोड़ी, क्योंकि अभी अभी तो इतनी बात बता क्या है। इस कथन का चूर्णी सूत्र के साथ विरोध क्यों नहीं होता, प्रश्न चिन्ह। उसका समाधान, विरोध तो होता ही है, किंतु जानकर जिस प्रकार अविरोध हो उस प्रकार कथन करना चाहिए।
सेम बात में विरोध भी और अविरोध भी बता रहे हैं।
नहीं, ऐसा कहते हैं विरोध तो दिख रहा है परंतु उनकी अपेक्षा ख्याल में लेना, ऐसा कहना चाहते। परिणाम वही तो, अविरोध कैसे हो सकता है, परिणामों की बात करें तो अविरोध हो जाएगा। अविरोध करना है ना कि ये बात गलत नहीं है, अब उनको लेना। तो यहाँ परिणामों की बात करो, वहाँ कहता कि स्थिति की बात करो।
एक तो बहुत डिफिकल्ट के समझ के आए अभी।
तो कहते पहले बताना था। हम भी शास्त्र की बात आती है ना कहीं, तो वहां भी यही वाक्य ख्याल में लेना, जानकर जिस प्रकार अविरोध हो उस प्रकार कथन करना चाहिए। द्रव्याणि योग में भी कितनी बातें आती है ना, कहीं राग को पुद्गल का कहा, कि कहीं राग आत्मा को ही राग कहा, तो विरोध है। अरे बाबा, एक ही आचार्य ने लिखा है।
ये बात तो अपेक्षा होती है,
यहाँ और यहाँ भी अपेक्षा ही लगा ना। यहाँ अविरोध कैसे हो,
आगे हमने देखा कि असंख्यात लोक प्रमाण
परिणामों के भेद हो सकते हैं,
इसलिए एक ही स्थिति का बंद,
एक स्थिति का बंद हो सकता है।
ऐसी स्थिति की मुख्यता ली थी,
वहाँ एक ही स्थिति की मुख्यता ली, फिर अलग दूसरी स्थिति बंदी, उसके लिए उसकी रेंज और अलग। तो परिणामों की अपेक्षा अगर भेद देखेंगे तो अलग अलग स्थितियां भी बंदेगी कि नहीं बंदेगी, नहीं समझे आप? जैसे कोई एक विशिष्ट स्थिति है, ये विशिष्ट परिणाम है,
उसके लिए असंख्यात लोक प्रमाण
नहीं, एक परिणाम ही स्थितियां अलग अलग बांध सकता है ना, दो अलग अलग स्थितियां भी बांध सकेगा वो। दो क्या, जहां तक वो हम निर्वर्गणा कांडक देखते थे, हमने देखा था कोई विशिष्ट परिणाम, हमने देखे थे लास्ट वाले कौन से, 39, 40, 41, 42। तो 42 वाले जो परिणाम है उसमें वो जघन्य भी स्थिति बंधेगी, एक समय अधिक भी बंधेगी, दो समय अधिक भी बंधेगी, तीन समय अधिक भी बंधेगी। अब वो परिणामों में ऐसे अलग अलग स्थितियां भी लगा और परिणाम भी लगा, उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो भी अलग अलग स्थितियां भी प्राप्त होगी और परिणाम भी होंगे। तो कथन क्या करना है कि जिसमें अविरोध न हो, इस तरह से उसको हमें समझना चाहिए, कथन करना चाहिए, नहीं समझ कर कथन करना चाहिए। इसी प्रकार देखो, हम देखते जब ही कर्णानुयोग में तो निमित्त की अपेक्षा, निमित्त का कथन करने के लिए कर्म से ऐसा होता है वैसा होता है ये सब बताए, परिणामों के द्वारा इतने स्थितियां बनती है। द्रव्यानुयोग कहेंगे वो जीव को कर्म बनता ही नहीं, जाओ। और वो परिणाम जो है वो जीव का है ही नहीं, क्योंकि वहां त्रिकाली स्वभाव में एकत्व स्थापित करना है। तो जहां जिस अपेक्षा से बात हो रही है उसको उस तरह से समझेंगे तो हमारा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो विरोध का प्रश्न ही नहीं होगा। इसी प्रकार तिर्यंच, अभी जो सभी जीवों की अपेक्षा जो बताया था वही बात, तिर्यंच कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेदी, क्रोधादि चारों कषाय वाले, असंयत अचक्षु दर्शन वाले, कृष्णादि तीन लेशा वाले, भव्य और आहारक जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, यद्यपि चूर्णी सूत्रकार ने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अवस्थित स्थिति विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण बताया है, परंतु यहाँ उच्चारणा के अभिप्राय अनुसार वह अंतरकाल असंख्यात लोक प्रमाण बताया गया है। सो यद्यपि इन दोनों कथनों में विरोध तो है, फिर भी ऐसा मालूम होता है कि चूर्णी सूत्रकार स्थिति विकल्पों के अंतर का मूल कारण स्थितिबंध के कारणभूत परिणामों को नहीं स्वीकार करके उक्त कथन करते हैं, और उच्चारणाचार्य स्थितिबंध के विकल्पों के अंतर का कारण परिणामों को स्वीकार करके उक्त कथन करते हैं। यही कारण है यहाँ इन दोनों प्ररूपणाओं में मतभेद दिखलाई देता है। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसे विवक्षा भेद कहा जा सकता है। वीरसेन स्वामी ने इस मतभेद का उल्लेख कर जो इसमें सामंजस्य बिठाने की सूचना की है उसका रहस्य र करना उसका यही प्रतीत होता है। इस प्रकार इन दोनों मतभेदों का वास्तविक कारण क्या होना चाहिए इसका विचार किया। यही रुकते अभी हम। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो। मयंक भाई।